ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वपादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छिष्णधात् कराम्बुजम् उत्थाय तत्शिष्णि अधात् कराम्बुजम् कालाहि वितष्ट धियाम् कराम् कृताभयम्। कालाहि वितष्ट धियाम् कृताभयम्।
पादमूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्चीर्ण्य दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्तधियां कृताभयम्।
सतत करस्पर्श धुता अखिला सुहर सपद अभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मम हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत तनुः क्लीन हृदय सुलोचन
स्वपाद मूले अपने चरण कमलों पर पतितम गिरा हुआ तम उस प्रहलाद महाराज अर्भकम छोटे से बालक को विलोक्य देखकर देवः नृसिंहदेव ने कृपया अपनी अहैतुकी कृपा से परिप्लुतः भाव विभोर होकर उत्थाप्य उठाकर तत्सृष्णि उसके सिर पर अदधात रख दिया कर अम्बुजम अपना कर कमल काल अहि काल रूपी सर्प का जो तुरंत ही मार सकता है। वित्रस्त डरा हुआ धियान उन सबों के जिनके मन कृत अभयम निर्भय बनता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जब नृसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद ने प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को सदैव अभय दान करने वाला है। तात्पर्य। भौतिक जगत की चार आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है, सदा समुद्विग्न धियान। और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। जब भगवान नृसिंह देव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान नृसिंह देव के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यतो यामि ततो नृसिंह, हम जहां जहां भी जाएं सदैव नृसिंह भगवान का चिंतन करें। इस तरह भगवत भक्त को कोई भय नहीं रह जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
नवा अध्याय चालू हो रहा है तो किताब नहीं है सबके पास। श्री नारद जी कथा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। श्री नारद वाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुर सरा नो पाए तुम असकन मनु सांगम सुदुरासदम। श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर की सभा में ये कथा कह रहे हैं। जब सभी देवता भगवान नृसिंह देव की स्तुति किए, जिनमें ब्रह्मा और भगवान शिव ये मुख्य हैं, ब्रह्म रुद्र पुरा सरा, पुरा सरा का अर्थ है आगे आगे चलने वाले। ब्रह्मा और भगवान शिव देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। वे सभी देवता इस प्रकार भगवान की स्तुति किए, प्रार्थना किए, जैसा कल कथा हुई थी। लेकिन भगवान अभी क्रोध में थे, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का वध करना चाहा, इस बात से भगवान कुपित हुए और कई असुरों को मारे, हजारों असुरों को मार दिए अपने दांत से, अपने नख से फाड़ दिए। हिरण्यकश्यपु जो सबसे पहले मारा गया, उसकी लाश पड़ी हुई थी वहां सामने। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भगवान वास्तव में विशुद्ध सत्वमय है। नृसिंह तापनी उपनिषद में वर्णन किया गया है कि भगवान को वास्तव में रजोगुण बाधित नहीं कर सकता। ये काम क्रोध सब रजोगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान विशुद्ध सत्वमय है, उनमें वास्तव में क्रोध नहीं है। लेकिन क्रोध का नाटक कर रहे हैं। एवं नाटित रौद्र चेष्टितम, भगवान का वह नाटक ऐसा भयानक था कि देखने वाले श्री ब्रह्मा जी और श्री भगवान नारद शिव जी ये लोग भी शंकित हो गए कि पता नहीं इस समय क्या करेंगे। तो वे लोग भगवान को मनाने के लिए, शांत करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग देवताओं का समाज। सबके प्रार्थना करने के बाद भी भगवान मनुसरंभम, भगवान क्रोध का आवेश रखे हैं, किसी पर देख रहे थे तो ऐसे देख रहे थे उसको भय हो जा रहा था। तो भगवान को शांत नहीं कर सके। एवं सुरादय सर्वे, सर्वे सुरादय देवराज इंद्र, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी, किसी की प्रार्थना से भगवान शांत नहीं हुए। किसी की ओर स्नेह से देखे नहीं। ये सभी भगवान के भक्त हैं, देवता। लेकिन फिर भी भगवान इतना क्रोधित थे हिरण्यकश्यपु पर, उसको मरने के बाद भी, उसका पेट फाड़ने के बाद भी उनका क्रोध रुक नहीं रहा था। मनुष्य संरंभम शूद्रासदम, भगवान के पास किसी को आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, दूर से ही कहते थे सरकार हम आपके दास ब्रह्मा हैं, आपके सेवक शिव हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए क्या सेवा करें, लेकिन भगवान क्रोध से देख ही रहे थे। ये सब शांत करने में सक्षम नहीं हो सके, तो भगवान इस तरह से अशांत थे, क्रोध में थे, तो साक्षात श्री प्रेषिता देवई, साक्षात लक्ष्मी जी भेजी गई। माता लक्ष्मी से सभी देवताओं ने कहा, माता जी आप भगवान को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी बड़े गर्व से चली, हाँ वे तो मेरे पति हैं, मैं इनको शांत कर दूंगी। जब थोड़ा निकट आई और देखी विकराल रूप, तो उलट करके लौट गई, ये मैं इनको नहीं शांत कर सकती। लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, यद्यपि वैकुंठ में भगवान नरसिंह देव रहते हैं लेकिन वहां शांत रूप में रहते हैं, पर ऐसा क्रोध है, भयानक आंख और पर्वत की गुफा के समान खुला हुआ मुख, नासिका, विकराल नख हाथ में देखा, तब लक्ष्मी जी को हिम्मत नहीं हुई आने की, भय हो गया कहीं क्रोध में चला देंगे हाथ तो फिर हमारी तो लीला ही खत्म हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी और भगवान शिव से उन्होंने कहा कि ठीक है ये पति हैं हमारे, लेकिन इस समय इनका मूड ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी अब देखने लगे प्रह्लाद महाराज की ओर। प्रह्लाद को कहा, बेटा तुम्हारे लिए भगवान का आविर्भाव हुआ है, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए हैं, और क्रोध भी तुम्हारे कारण से है, इसलिए तुम भगवान को शांत करो, मनाओ, तुम्हारी प्रार्थना से भगवान शांत हो जाएंगे। श्री प्रह्लाद महाराज को कोई भय नहीं हुआ, पहले से भय नहीं था, तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके वे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। छोटा सा बच्चा, उसके प्रणाम करते ही भगवान शांत हो गए, परम सौम्य रूप हो गया भगवान का। तो यही से श्लोक अवृत्ति की गई, किया गया, स्वपाद मूले पतितं तमर भकम, स्वपाद मूले, भगवान ने देखा हमारे चरणों के पास बच्चा प्रह्लाद पतितं गिरा हुआ है, तो देखते ही कृपया परिप्लुता, भगवान प्रेम से विह्वल हो गए। परिप्लुता, प्लुता का अर्थ है वे भर गए, परितः प्लुता सब तरह से कृपा की बाढ़ में डूब गए। भगवान का हृदय भर आया और प्रह्लाद को दोनों हाथों से भगवान ने उठाया, उत्थाप्य उठा करके अपनी गोद में बैठाया और अपने करकमल को प्रह्लाद के मस्तक पर रखा। नारद जी भगवान के करकमल की विशेषता बता रहे हैं। काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम, यह काल एक महान अजगर की तरह है और यह सारे जीवों को निगल रहा है, काल के वश में सभी हैं। भगवान का करकमल करामबुज इस काल सर्प से भक्तों की रक्षा करता है। यदि कोई काल से बाहर जाना चाहता है, कालातीत होना चाहता है, तो वह भगवान की शरण लेता है। भगवान ऐसे दयालु हैं कि भक्त को अभय कर देते हैं। कृता भयम, जन्म मृत्यु का भय उसे नहीं रह जाता है। काल सर्प से भगवान का हस्त कमल रक्षा करता है। जो भी चरणों में प्रणाम करता है तो उस पर भगवान अपना अभय हस्त कमल रखते हैं और वह भक्त सदा के लिए निर्भय हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये भगवान के हस्त कमल की विशेषता है। तो श्री भगवान ने अपने हस्त कमल को प्रह्लाद महाराज के सिर पर रखा, श्रीश्री सिर पर और दधात भगवान ने रखा। तो भगवान के हस्त कमल के स्पर्श का क्या प्रभाव पड़ा ये वर्णन करते हैं। सतत करस्पर्श धुता खिलास हुआ, तत् करस्पर्श भगवान के हस्त स्पर्श से धुता अखिलास हुआ, प्रहलाद महाराज के अखिल अशुभ नष्ट हो गए। क्या अशुभ थे प्रहलाद महाराज, कुछ भी अशुभ था नहीं, लेकिन नारद जी कह रहे हैं उसका सारा अशुभ नष्ट हो गया। जो भी दुर्दृष्ट था वो नष्ट हो गया, सारा कर्म बंधन समाप्त हो गया। कर्मों के कारण ही श्री प्रह्लाद को अशुभ असुर जाति में जन्म लेना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ अदृष्ट कर्म फल रहता है, तो जो भी अशुभ कर्म था, कर्म की वासनाएं थी, वो पूर्णतः नष्ट हो गए। भगवान के हाथ के स्पर्श से सतत करस्पर्श धुता खिलास हुआ, अखिल अशुभ नष्ट हो गए और सपद अभिव्यक्त परात्म दर्शन। हाथ का स्पर्श होते ही तत्काल भगवान का पूर्ण ज्ञान हो गया प्रह्लाद को, परात्म दर्शन परात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन ज्ञान हो गया। ठीक ऐसा ही ज्ञान श्री ध्रुव महाराज को हुआ। भगवान ने अपना शंख छुआ दिया उनके गाल से, तो उनको समस्त वेद का ज्ञान हो गया। तो भगवान ने प्रह्लाद महाराज के मस्तक को अपने हाथ से छुआ और छूते ही संपूर्ण ज्ञान हो गया। भगवान का, भगवान के संबंध से जीव का जो भी यथार्थ स्थिति है वो पूर्ण ज्ञान हो गया। इसीलिए भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए, दर्शन से भी ज्ञान होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते। एक भक्त ने कहा है, नारायण भट्टतिरी नारायणियम ग्रंथ है, उसमें वे एक श्लोक में कहते हैं, कष्टा ते सृष्टि चेष्टा, हे प्रभु मैं ये समझता था कि आपकी सृष्टि चेष्टा जो सृष्टि करते हैं केवल जीवों को दुख देने के लिए, कष्टा ते सृष्टि चेष्टा। बहुतर भव खेदा वहा जीव भाजा, सभी जीवों को बहुत संसारिक दुख देने के लिए आप सृष्टि करते हैं। इत्येवं पूर्व मया अमजित नैव मध्याभिजाने पूर्व मालोचितम, मैं ये समझता था पहले कि आप सृष्टि करते हैं केवल दुख देने के लिए जीवों को, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूं। अजित नहीं व मध्याभिजान है, आज मेरी धारणा बदल गई है। नोचेत जीवा, यदि आप जीवों को नहीं बनाए होते, मनुष्यों को नहीं बनाए होते, और त्रियक मतलब पशु पक्षी ये सब नहीं बनाए होते, मनुष्य नहीं बनाए होते, तो फिर वे कैसे आपके इस परम सुंदर चिदानंद स्वरूप को वे आंखों से देखते और कानों से सुनते आपके विषय में। तो आंखों से दर्शन करते हैं, कानों से सुनते हैं, परम आनंद रस में वे निमग्न हो जाते हैं। यदि आप सृष्टि नहीं किए होते तो कैसे वे आनंद के समुद्र में डूबते। आपका यह श्री विग्रह ज्ञानमय है और आनंदमय है। ज्ञान और आनंद कई समुद्र है, तो इस समुद्र में कैसे डूबते, कैसे इतने आनंदित होते। तो मैं अब समझ रहा हूं कि आपकी सृष्टि चेष्टा जीवों को परम सुख देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं। आपने हे प्रभु कान बनाया सुनने के लिए और आंख बनाया अपने बपू का शरीर का दर्शन करने के लिए, तो यह है आपकी बहुत बड़ी दया है जीवों को आनंद सुधा सागर में डुबाने के लिए। तो कवि स्वयं कहते हैं भक्त की पहले मेरी धारणा कुछ और थी, अब मैं और समझ रहा हूं। भगवान को देख करके वे कहते हैं, गुरुवायुर के भगवान कृष्ण को देख करके, उनके विषय में सुन करके वे कहते हैं कि निश्चित है कि आप परम सुख देने के लिए सृष्टि किए हैं, दुख देने के लिए नहीं किए। अद नैवा भी जाने, अब मैं पूर्व धारणा को छोड़ चुका हूं। तो यह भगवान की सृष्टि लीला है, इसके पीछे उद्देश्य है कि जीव विशेष करके मनुष्य परम अमृत रस सुधा में डूब जाए, अम्भोधि में, समुद्र में डूब जाए, आनंद ले। भगवान के विषय में सुनना बड़ा आनंद है और भगवान को देखना आंखों से, यह भी आनंद का सागर है। तो भगवान को हम लोग देखते हैं, भगवान भी हम सब पर दृष्टि डालते हैं, हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो स्वाभाविक ज्ञान आनंद आएगा ही। भगवान का श्री विग्रह चिदानंदमय है, तो चिन्मय है और आनंदमय है, चेतन है, ज्ञानमय है और आनंदमय है और नित्य है, सच्चिदानंद। भगवान की इच्छा है कि सभी मनुष्य उनको देखें, वे श्री विग्रह के रूप में प्रकट हैं, जहां तहां प्रकट हैं। यहां बॉम्बे में राधा रास बिहारी के रूप में, राधा गिरधारी के रूप में, राधा गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट हैं, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों को ये सौभाग्य देते रहते हैं। यह भगवान की सृष्टि लीला परम आनंददायी है। तो श्री भगवान अपना हस्त कमल प्रहलाद पर रखे, इसी से उन्हें पूर्ण भगवत ज्ञान हो गया। सपदी उसी समय, जिस समय रखे सिर, उधर टच होना, और टच होते ही सब अभिव्यक्त परात्म दर्शन, परात्म दर्शन भगवत ज्ञान अभिव्यक्त हो गया हृदय में। तत्पाद पद्मम हृदय निर्वृत बनम, और जब भगवान का ज्ञान हो गया तो श्री प्रहलाद महाराज पूर्ण निवृत्त हो गए। निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है सुख, आनंद। भगवान के हस्त कमल का स्पर्श पाने से प्रहलाद महाराज पूर्ण आनंद में हो गए, भगवान का ज्ञान हो गया। और उनकी क्या दशा हुई, पूर्ण निवृत्त, निवृत्त हो गए, आनंद में हो गए। दूसरा हृष्य तनु, उनके शरीर में रोमांच हो गया, क्लीन हृदय, हृदय क्लीन हो गया, आर्द्र हो गया। अश्रुलोचना, प्रहलाद महाराज के दोनों आंखों में आंसू भर आए, डबडबा आई आंखें, और भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में देखने रख लिए दधव। भगवान के चरण कमल ही सबसे बड़े पुरुषार्थ हैं भक्तों के। और श्री प्रहलाद महाराज का मन लगा था भगवान में, भगवान को देख रहे थे, उनका हृदय लग गया भगवान में, इच्छा आंखें वे भगवान को देख रहे थे और मन में वही भगवान की छवि थी, आंखों में आंसू था और हृदय क्लीन हो गया, हृदय सिक्त हो गया स्नेह से। प्रहलाद महाराज की वाणी बिल्कुल स्खलित हो गई, वे बोलना चाह रहे थे बोल नहीं पाए प्रेम के कारण। इस संसार में देखा गया है जब किसी का हृदय पिघल जाता है और आंखों में आंसू भरता है, वाणी गदगद हो जाती है, व्यक्ति बोल नहीं पाता है, तो प्रहलाद महाराज बोलना चालू किए पर उनकी वाणी गदगद हो रही थी। सबसे पहले प्रहलाद महाराज ने भगवान से यही कहा कि जब इतने बड़े बड़े देवता ऋषि सिद्ध ये सब आपको प्रसन्न नहीं कर पाए अपनी वाणी से, क्योंकि ये सभी सत्वगुणी हैं, इनकी बुद्धि निर्मल है, ये आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं दैत्य असुर वंश में जन्मा हुआ कैसे आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, ये सभी लोग आपको चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाएं, पर कोई नहीं कर पाए, लोग धारावाहिक वाणी से वचन प्रवाह है, वचन के प्रवाह से आपको खुश करना चाहते हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए, शांत नहीं हुए, तो मैं तो असुर जाति का हूं, आप कैसे मुझ पर प्रसन्न होंगे, आप कैसे खुश होंगे, अपनी अयोग्यता को बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, मैं असुर योनि में जन्म लिया, मैं छूने लायक नहीं हूं, फिर भी आप हमको उठाकर गोद में रखे, तुम्हारे सिर पर हस्तकमल रखे, ये आपकी उदारता है, परंतु मैं सब तरह से अयोग्य हूं, हीन हूं, इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। तो गदगद वाणी में ही उन्होंने 42 श्लोकों में स्तुति किया, और भगवान इनकी स्तुति से प्रसन्न हो गए यह बात नहीं है, केवल प्रणाम से ही वे प्रसन्न हो गए। प्रहलाद महाराज को उठाकर गोद में रखे, हस्त कमल उनके सिर पर रखे, उसी समय शांत हो गए बिल्कुल। कोई क्रोध का चिन्ह नहीं था, और स्तुति के अंत में प्रहलाद महाराज से बातें भी किए, और किसी की स्तुति के बाद भगवान बोले नहीं, वैसे ही क्रोध में देखते रहे, पर श्री प्रहलाद के वचन के बाद भगवान प्रहलाद महाराज से बात किए हैं। हाँ, उन्होंने एक ब्रह्मा जी से वाक्य कहा, इस प्रकार बेढंगा वर मत दिया करो, वर दे करके सबको तबाह कर दिया। ब्रह्मा जी कहे ठीक है प्रभु, अब हम ऐसा वर नहीं देंगे। ब्रह्मा जी के वर ने सारे जगत को तबाह कर दिया। तो और किसी से पूछे नहीं कि आप कैसे हैं, इतनी स्तुति की गई, लेकिन बोले केवल प्रह्लाद महाराज से और ब्रह्मा जी। श्री प्रह्लाद महाराज से भगवान ने बहुत हठ किया मांगने के लिए, तो भगवान की बात को रखने के लिए उन्होंने एक वर मांगा। हमारे पिताजी आपकी बहुत निंदा किए, गाली दिए, और मैं आपका भक्त था इसलिए मुझे भी दुर्वचन कहे, तो मेरे पिता नरक में ना गिरे, यही कृपा करके दीजिए, यही उन्होंने मांगा। तो भगवान कहे कि तुम्हारे जन्म लेने से ही इस वंश में 21 पीढ़ी के लोग तर गए, हमारे धाम में चले गए, तुम पिता के लिए क्यों चिंता कर रहे हो, ये तो मेरे शरीर के स्पर्श से मैंने इसको मारा है, इसी से यह परम गति पाएगा, इसकी चिंता मत करो। तो प्रह्लाद महाराज अपने लिए कुछ भी नहीं मांगे, अपने पिता की चिंता कर रहे थे। उतना अत्याचारी पिता होने के बाद भी श्री प्रह्लाद मांगे भगवान से कि मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तो यह भी एक शिक्षा है, पुत्र को कैसा होना चाहिए, किसी भी स्थिति में व्यक्ति अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं होता, इस पर रहता ही, इसलिए हर एक प्रयास करके उस ऋण को चुकाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो दुर्गति होती है। यदि भगवान का नाम आपके प्रयत्न से माताजी या पिताजी लेने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे, भगवान का प्रसाद खाने लगे, तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया। यह प्रह्लाद महाराज से सीखना चाहिए कि इतना दुर्वचन बोला वो और इस तरह से मारने का प्रयास किया, पर फिर भी प्रह्लाद स्नेही किए। और हिरण्यकश्यपु जो भगवान का पार्षद है, जो तो पार्षद ही हो गया बाद भगवान के धाम में, पर फिर भी प्रह्लाद महाराज का जो विचार है वो सीखने लायक है सबके लिए। जिनके पिताजी, जिनके जिनकी माताजी हैं, तो सेवा करनी चाहिए, सब प्रकार की सेवा, उनको भोजन देना, उनको आराम देना, और सर्वोपरि है उनको कृष्ण भावना भावित बनाना है। कृष्ण भावनामृत में आ जाए, कृष्ण से जुड़ जाए, तो बहुत बड़ा काम हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि तो वो बेन भगवान की निंदा किया तो ऋषियों ने उसे मार डाला, वो नरक में गिरने वाला था, प्रह्लाद महाराज के चलते हिरण्यकश्यपु नरक में नहीं गिरा, भगवान के धाम में गया, तो फिर बेन क्यों नहीं गया। बेन के कुल में तो साक्षात भगवान जन्म लिए थे, उसके पुत्र बने थे, जब फिर भी ऋषि लोग उसे नरक में गिराना चाहते थे। और नारद जी कहते हैं बेन में और हिरण्यकश्यपु में बहुत अंतर है। हिरण्यकश्यपु भगवान का चिंतन करता था हमेशा, भगवान का चिंतन करने से वो शुद्ध हो गया, और राजा बेन एक बार केवल निंदा किया भगवान की, उसका चित्त लगा नहीं था। जब ऋषियों ने कहा कि भगवान की भक्ति करने दो अपने राज्य में, तब वह गाली दिया कि विष्णु कौन है, मैं जगत का ईश्वर हूं। तो वह निंदा किया केवल एक बार, तो उसका चित्त भगवान में लगा नहीं था। अवसर पा करके वैसे कह दिया भगवान के विषय में कुछ, लेकिन हिरण्यकश्यपु द्वेष भाव से ही पूरा पूरा कृष्ण में आसक्त था। तो कृष्ण की चर्चा करता था, बात करता था, कृष्ण को मारना चाहता था, उसका मन पूर्ण रूप से लगा था भगवान में। बेन में और हिरण्यकश्यपु में बहुत अंतर है। जिस हिरण्यकश्यपु के मरने पर सारे देवता भगवान से अनुमोदन कर रहे थे कि आपने अच्छा किया, वही श्री प्रहलाद महाराज भगवान से वर मांगे, जबकि वे कहे कि हमें कोई वर नहीं चाहिए, वे वर दीजिए कि हमारे हृदय से कुछ कामना निकल जाए, कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। लेकिन फिर भी जब भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो वे कहे कि एक चीज आपसे मांग रहा हूं, अपने आप कहे, अपने पिता की मुक्ति चाहे। तो ये प्रसंग बहुत प्रेरणा देता है, और सब लोग पुत्र हैं ही किसी न किसी के, तो अपने माता पिता का उपकार करना चाहिए, उनका उपकार मानना चाहिए और प्रत्युपकार करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रत्युपकार है कि उनको कृष्ण भावना भावित बना दिया जाए, भगवान का नाम लेने लगे, भगवान को प्रणाम करने लगे और भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद खाए, ये बहुत बड़ा उपकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने माता पिता को इस तरह से वो करे, कृष्ण भक्ति में लाने की कोशिश करे। प्रहलाद महाराज की कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जब प्रहलाद महाराज कह चुके कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे हृदय से कामनाओं का अंकुर ही न उगे, इसको नष्ट कर दीजिए, तो फिर भगवान से क्या मांगना था। फिर भी ये मांगे कि मेरे पिता को क्षमा कीजिए, क्या यह प्रसंग ये प्रेरणा नहीं देता है कि किसी भी पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अवश्य इस प्रसंग से यह तथ्य प्रकाश में आता है, जितनी शक्ति भगवान ने दिया है, जो फैसिलिटी दिया है, उसी से हम अपने माता पिता अपने स्वजनों का उपकार करें। और अपने स्वजनों का ही नहीं, सारे संसार का करें, सबका करें जहां तक हो सके। प्रहलाद कितना निर्भय प्रीचर थे, कि हिरण्यकश्यपु के स्कूल में मरने की चिंता न करके उन्होंने असुर बालकों को भक्ति का विज्ञान सिखाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान की कृपा पर साहस करना चाहिए, विश्वास करके, और जहां तक हो सके, हमारी जहां तक पहुंच हो, हम भगवान के नाम का प्रचार करें, लोगों से भगवान को प्रणाम करने को कहें, श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए प्रेरित करें। प्रहलाद महाराज की कथा से बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, वे बड़े कृपालु थे। प्रहलाद महाराज अपने भाइयों को कृष्ण भावना में नहीं ला सके, अनुह्राद, संह्राद और ह्राद, ये तीन भाई थे उनके, और भगवान नृसिंह देव ने मार दिया उन लोगों को। जब असुरों को मार रहे थे तो उन लोगों को भी झपट करके मार डाले। श्री प्रहलाद महाराज असुर बालकों पर ढल गए, उनको कृष्ण भावना भावित किए। तो प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए, कृपा करना है। यदि कोई व्यक्ति लग जाता है भगवान का जप करने में तो यह बहुत बड़ा उपकार है। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा दी गई शिक्षा इसी भागवत में है, दो अध्याय में। कोई बहुत प्रयास नहीं करना क्या बोलेंगे, क्या सिखाएंगे। प्रहलाद जी बोले हैं, उस उन्हीं बातों को समझाना है, कोई कंकक्षण नहीं करना। जैसे बोले हैं प्रथम श्लोक में कहते हैं, कौमार आचरित प्राग्ञ धर्मान भागवतानि, हे असुर बालकों, कुमारावस्था में ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है, भगवान की कृपा से बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जीवों को ये मनुष्य शरीर मिले। भगवान की कृपा से कभी कभी किसी किसी जीव को ये मनुष्य देह मिलता है, और मिलने के बाद भी यह अनित्य है, कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है, इसमें रोग दुख लगे ही रहते हैं और बहुत तरह के संकट होते हैं। कभी बम विस्फोट हो सकता है, कभी दंगा होता है, और शरीर में अपने आप अनेक रोग होते हैं, रोगों से कभी कभी मृत्यु हो ही जाती है, कोई ठीक नहीं है कब शरीर चला जाएगा। अतः कुमारावस्था में जब शरीर ठीक हो उसी समय भगवान का नाम लेना चाहिए, भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। कुछ बच्चों ने पूछ लिया, बचपन में खेलेंगे खाएंगे बाद में कर लेंगे, तो प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, बाद में नहीं कर पाएंगे। और आज के युग में तो रोग के अलावा ही पढ़ाई का और बोझ हो गया है लड़कों पर, पढ़ना, पढ़ाई के लिए खर्च करना, और जब पढ़ गए तो अब नौकरी चाहिए, नौकर बनने की ख्वाहिश रहती है, नौकरी चाहिए, जब नौकरी जब हो जाएगी तो अब कहां फुर्सत है, तब तो संडे को भी मुश्किल पड़ेगा छुट्टी लेना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जवान होने पर तो अनेक वासनाएं बढ़ेंगी, फिर पैसा कमाने की और परिवार पोषने की, उस समय कहां फुर्सत मिलेगी, कैसे करोगे, कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचना सुमंत। जब प्रिया घर में आएगी तब उस समय भक्ति नहीं कर पाओगे, वो अनुकंपिता होगी, तुम पर कृपा करके तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी, कपड़ा साफ करेगी और सेवा करेगी, तो उस समय उसकी ममता छोड़ पाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। उसकी इच्छा को तोड़ पाना कठिन होगा। अभी चित्त खाली है, कोई ममता और कामना बहुत ज्यादा नहीं है, अभी कर सकते हो। और वार्धक्य में बड़े होने पर जब तुम्हारे माता पिता फिर वृद्ध हो जाएंगे, अक्षम हो जाएंगे, उस समय तुम कैसे छोड़ पाओगे, उनको भी छोड़ना कठिन होगा, फिर उनकी आज्ञा पालन करना, उनके लिए कुछ कमाना, घर बनाना, सब कुछ करना, उनकी उपेक्षा कैसे करोगे। और जब बिल्कुल वृद्ध अवस्था आ जाएगी तब कुछ कर ही नहीं पाओगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। कभी कभी बूढ़े लोग कहते हैं लड़कों को, अभी तुम्हारी उम्र है भाई भजन करने की, अभी मत करो, तो कब किया जाएगा, जब आपकी उम्र के हो जाएंगे तब, तो आप क्यों नहीं करते, तो कहते हैं अब हम क्या करें, कोई शक्ति है नहीं, तो जब शक्ति नहीं रहेगी तब भजन करेंगे ये बच्चे, कि अभी इसी उम्र में करेंगे। शक्ति तो एक दिन नष्ट हो ही जाएगी शक्ति, इसीलिए प्रतीक्षा आगे नहीं करनी चाहिए, शक्ति दिन पर दिन कम ही होती जाएगी, और यह बहुत बड़ा भय है मनुष्य जीवन में कि शक्ति कम हो, वो तो एक जगह पर है लेकिन शक्ति पूरा नष्ट हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, किसी भी समय हार्ट अटैक हो सकता है, किसी साधारण रोग से भी आदमी मर जाता है, और रोग ना भी हो तो रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, जैसा सुना जाता है ट्रेनों में, बसों में या कार से एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए अभी बचपन में जब शरीर स्वस्थ है कर लेना चाहिए भजन, प्रहलाद महाराज ने यही कहा, आगे चलकर बहुत बड़ी बाधा है, नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों ने उनकी बात को मान लिया। और अन्य लोगों को, अन्य असुरों को भी नहीं सिखाए, क्योंकि वे सब काम धंधा में थे, अपने नौकरी चाकरी में फंसे थे, वो तो ध्यान नहीं देते, तो प्रहलाद ने उनको नहीं सिखाया, अब तो उन सबको तो नृसिंह भगवान ही सिखाएंगे मार कर। तो ये बातें सीखनी चाहिए जो प्रहलाद महाराज ने किया, दूसरों को बताना चाहिए कि भगवान के भक्त बनिए, मंदिर आइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान के बारे में कुछ सुनिए। जहां तक अपनी बुद्धि और शक्ति काम करे लोगों को लाना चाहिए, मंदिर से जोड़ना चाहिए भगवान जीवों को। कुछ रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप कुछ समय निकालकर गीता पढ़िए, भगवद गीता एज इट इज, ये प्रभुपाद जी का दान है। प्रहलाद महाराज की बातें सब गीता में मिल जाएंगी, भगवान की बातें, तो उसे पढ़वाना चाहिए। घर पर माँ है, पिताजी हैं, भाई है, इन लोगों से आग्रह करके कहना चाहिए कुछ पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए। आप भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। इस तरह से हम दूसरे का उपकार कर पाएंगे और अपना हित भगवान का नाम जप करके, भगवान को प्रणाम करके कर पाएंगे, कीर्तन करके, जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं प्रहलाद महाराज की यहाँ कथा कहा, इसमें कई ऐसे वाक निकल गए होंगे जो उचित नहीं होंगे, कोई कभी भूल से, असावधानी से, या कभी कभी बुद्धि की कमी से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे, आप उसको क्षमा करेंगे। और श्री प्रहलाद महाराज को, भगवान सिंहदेव को अपने हृदय में दे करके जाइए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।